आप लोगों ने ये श्लोक कल गाया था, मधुरम मधुरम वपुरास्य विभोर, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंधि मृदु स्मितमेतदहो, मधुरम 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 मधुरम। भगवान श्री कृष्ण का वपु अत्यंत मधुर है और उसमें भी अधिक मधुर है उनका मुख, और मधुगंधि शहद की गंध जैसी उनकी मधुर मुस्कान वे और अधिक मधुर है, और अधिक मधुर है, और अधिक मधुर है। आप लोग में से किसी के पास टेक्स्ट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, यही तो हम चाह रहे थे। आ गया यहाँ पे जी, पेज नंबर 133। तो कृष्ण के माधुर्य के वर्णन करते हुए महाप्रभु आगे कह रहे हैं, सनातन कृष्ण माधुर्य अमृत तेरा सिंधु, मोर मन सन्निपात सब पीत। ऐसे गाएंगे, मोर मन सन्निपाती सब पीते करे मति। नहीं, ऐसे कैसे गा रहे थे? सनातन कृष्ण ना है, ऐसे ही होगा। सनातन कृष्ण माधुर्य अमृत तेरा सिंधु, मोर मन सन्निपाती सब पीते करे मति, दुर्देव वैद्य न देई एक बिंदु। नहीं आ रहा है, क्यों ऐसे नहीं हो रहा है? हर बार हम क्यों भूल जा रहे हैं इसको? एनीवेज, सनातन कृष्ण का, सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी राइट ऑन कर दीजिए, कृष्ण का माधुर्य अमृत की एक सिंधु के समान है, अमृत के एक सागर के समान है, और मेरा मन सन्निपाती है। सन्निपाती करता है, सन्निपात रोग से ग्रस्त, सब पीते करे मति, वो चाहता है कि समुद्र को पूरा पी जाऊं, दुर्दैव वैद्य ना दे एक बिंदु। लेकिन देखो हमारा दुर्भाग्य क्या है कि ये जो वैद्य है, वैद्य है कौन? कृष्ण। कृष्ण रूपी वैद्य उसका एक बिंदु भी मुझको नहीं दे रहे। ये है, हे सनातन कृष्ण की मधुरता अमृत की सिंधु जैसी है, यद्यपि मेरा मन इस समय सन्निपात से ग्रसित है और मैं उस समूचे समुद्र को पी लेना चाहता हूं, किंतु दुर्दैव वैद्य मुझे उसकी एक बूंद भी पीने की अनुमति नहीं दे रहा है। तात्पर्य, जब शरीर में तीन तत्वों कफ पित्त तथा वायु तीनों दोषों का मेल होता है तो सन्निपात हो जाता है। अब क्या इसका अर्थ हम नहीं समझ रहे हैं? सन्निपात पता है आपको? सन्निपात में क्या होता है? अरे इक्वल रेशो तो समझ आ रहा है कि सन्निपात में होता क्या है? सन्निपात इसमें ये लिखा है कि वात पित्त एवं कफ तीनों बढ़ जाते हैं, जिस कारण व्यक्ति अपना मानसिक एवं शारीरिक संतुलन खो देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य स्मृति खो देता है और वह पागल की तरह आचरण करने लगता है। ज्यादातर मामलों में किसी गंभीर बीमार के चलते सन्निपात देखा जाता है। तो ये सब बोलना है कि मतलब दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है, अब यही इसका अर्थ है, पगला जाता है, ये सन्निपात हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरा यह रोग भगवान कृष्ण के निजी स्वरूप से उत्पन्न होता है। तीन तत्व हैं। अच्छा, कृष्ण का शारीरिक सौंदर्य मधुरम वपु, उनके मुख का सौंदर्य तथा उनकी हंसी का सौंदर्य, इन तीनों सौंदर्यों से आहत होकर मेरे मन को सन्निपात हो जाता है। कुछ समझे? देखिए हमने क्या सुना, सन्निपात में पात वात पित्त और कफ तीनों एक साथ बढ़ते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि जो मेरा मन का सन्निपात है वह भी किससे बड़ा है? तीन वस्तुओं से बड़ा है। कुछ समझ रहे सन्निपात क्यों कह रहे हैं? कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य को मन देखना चाहता है, उनके मुख के सौंदर्य का आस्वादन करना चाहता है, उनकी हंसी के सौंदर्य का आस्वादन करना चाहता है, तीनों की लालसा बढ़ रही है, इसलिए मेरे मन को सन्निपात हो गया। क्या अद्भुत बात है। यह कृष्ण के सौंदर्य रूपी सागर को पी जाना चाहता है, किंतु चूंकि मैं सन्निपात से पीड़ित हूं, अतः मेरे वैद्य जो कि साक्षात श्री कृष्ण है, इस सागर की एक बूंद भी नहीं पीने देते। मतलब कृष्ण अपने सौंदर्य का आस्वादन मुझे नहीं करने दे रहे हैं, बहुत समय नहीं दे रहे हैं देखने के लिए, ये कहने का आशय है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में थे, क्योंकि वे अपने आप को गोपी भाव में प्रस्तुत कर रहे थे। गोपियां कृष्ण के शरीर से निकलने वाले माधुर रूपी सागर को पी जाना चाहती थी, लेकिन कृष्ण ने उन्हें निकट नहीं आने दिया। फलतः कृष्ण से मिलने की उनकी इच्छा बढ़ गई, किंतु कृष्ण के स्वरूप का अमृत न पी पाने के कारण वे अत्यंत दुखी हो गए। समझ में आ गया ये बात? लालसा बहुत अधिक है लेकिन कृष्ण का संग उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। কৃষ্ণাঙ্গলাবণ্যাপুরা মথুর হইতে সুমধুর তাতে যে মুখ সুধা কর মধুর হইতে সুমধুর তাহা হইতে সুমধুর তার এই স্মৃত জ্যোৎস্নাভর।
কৃষ্ণ কা অঙ্গ লাবণ্যপুর হ্যাঁ, লাবণ্য কা অর্থ কে শুনে থে আপ, সুন্দরতা পুর মতলব ভরা হুয়া হ্যায় সৌন্দর্য সে, মধুর হইতে সুমধুর মধুর সে ভি অধিক সুমধুর হ্যায় ইয়ে উসকি ব্যাখ্যা কর রহে হ্যায়। মধুরম 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 বপুরস্য মধো বিভো কেন বিভু, ইন ভগবান কা শরীর মধুর সে ভি অধিক মধুর, অভি গা তো রহে থে না কল ওই বলা, তাতে তাতে যেই মুখ সুধাকর, আর উনকা মুখ কেসা হ্যায় সুধাকর, অমৃত কা কে সকতে হ্যায় সুধাকর কো কে কহেঙ্গে, চন্দ্রমা চন্দ্রমা জসা হ্যায় ঠিক হ্যায় অমৃতময় চন্দ্রমা সে। মধুর হইতে সুমধুর তাহা হইতে সুমধুর, মানে কি উনকা মুখ আর অধিক সুন্দর লাগ রহা হ্যায়, তার যেই স্মিতা জ্যোৎস্না ভর, স্মিত জ্যোৎস্না ভর, তো উনকি যো স্মিত মুস্কান হ্যায় ওয়হ চন্দ্রমা কি কিরণ জসি হ্যায়। কল ব্যাখ্যা কিয়ে থে ইসকো, কৃষ্ণ কা শরীর আকর্ষক রূপো কি নগরী হ্যায় আর ইহ মধুর সে মধুরতর হ্যায়, উনকা চন্দ্রমা জসা মুখ আর ভি মধুর হ্যায় আর উস চন্দ্রমা জসে মুখ পর পরম মন্দ হাসি চাঁদনি কি কিরণো জসি হ্যায়। তাৎপর্য, কৃষ্ণ কে মুখ পর হাসি চন্দ্রমা কি হাসি জসি হ্যায় জো গোপিও কে লিয়ে অধিকাধিক সুখ উৎপন্ন করনে ওয়ালি ঠিক হ্যায়।
মধুর হইতে সুমধুরা তাহা হইতে সুমধুর তাহা হইতে অতি সুমধুর আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে দশ দিকে ব্যাপে জারপুর।
ইসকা অনুবাদ পড় লেতে হ্যায়, কৃষ্ণ কি হাসি সর্বাধিক মধুর হ্যায়, উনকি হাসি উস পূর্ণ চন্দ্রমা কি তরহ হ্যায় জো আপনি কিরণোঁ কো তিনো লোকো মে গোলোক বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠ তথা দেবী ধাম অর্থাৎ ভৌতিক জগত মে বিখেরতা হ্যায়, ইস তরহ কৃষ্ণ কি উজ্জ্বল সুন্দরতা দশো দিশাও মে ফেল জাতি হ্যায়। তো ইয়ে কৃষ্ণ কি স্মিত মুস্কান কি মধুরতা কা বর্ণন হ্যায়, মধুর সে ভি মধুর তাহা হইতে সুমধুর, উসসে ভি মধুর তাহা হইতে অতি সুমধুর, উসসে ভি অর অধিক মধুর, আপনার এক কণ আপনে এক কণ সে স্মিত মুস্কান কি মধুরতা কে এক কণ সে ব্যাপে ত্রিভুবন হ্যায়। আব ত্রিভুবন কা অর্থ হম সমাতা কে লেতে স্বর্গলোক পৃথ্বী লোক আর নিচে কে লোক, লেকিন হম লোক ইয়াদ হ্যায় কি পহলে ভি হম লোক তিনো লোকো কা অর্থ কে লিয়ে থে, গোলোক বৈকুণ্ঠ আর ইয়ে দেবী ধাম, তো ইনমে ব্যাপ্ত হো রহা হ্যায়, কুছ সমঝ মে নাই আ রহা হ্যায় কি ক্যাসে ব্যাপ্ত হো রহা হ্যায় লেকিন হো রহা হ্যায়। দশ দিক কা ব্যাপে যা রহা পুর, দশো দিশাও মে ইয়ে পুরা পূর্ণ রূপ সে ব্যাপ্ত হো রহা হ্যায়। ব্যাসে প্রভুপাদ জি আপকো ইয়াদ হ্যায় স্মরণ আ রহা হ্যায় কি वो बोलते हैं कि जगत की जो भी सुंदरता है वह भगवान की स्मित मुस्कान का थोड़ा सा प्रकाशन है। ये हम लोग प्रथम स्कंद में जहां तक मैं स्मरण आ रहा है कुंती देवी की प्रार्थना में कहीं से पढ़ चुके हैं कि भगवान कृष्ण हल्का सा मुस्कराए, कहां से मोहयन इव माया ऐसे करके कुछ था कि मानो वो माया से मोहित हो रहे हो या मोह ऐसा कुछ शब्द था, अब याद नहीं आ रहा कहां है, हम लोग प्रथम स्कंद में ही पढ़ चुके हैं इस बात को। हाँ शायद मंदम जहास वैकुंठ, हाँ भैया मंदम जहास वैकुंठ मोहयन इव माया ऐसे करके था। हाँ जब माता कुंती की प्रार्थना को सुनते हैं तब बोलते हैं मंदम जहास वैकुंठ, यस वही श्लोक है, वाह याद है आपको, गुड। तो इस प्रकार से कुछ कुछ समझ सकते हैं।
स्मित किरण सुकर पूरे पैसे आधर माधुरे से माधु माताय त्रिभुवने वंशी छिद्र आकाशे तार गुणा शब्दे पैसे ध्वनि रूप पाया परिणामे।
उनकी मंद मुस्कान तथा सुगंधित प्रकाश की तुलना कपूर से की जा सकती है, जो उनकी होठों की मधुरता में प्रविष्ट जाता है वही मधुरता ध्वनि बनकर उनकी बांसुरी के छेदों से आकाश में व्याप्त हो जाती है। वंडर्स प्रभुपाद वांट टू से, भाई ये समझ में नहीं आया, स्मित करण सकुर पूरे पैसे अधर मधुरे। अच्छा 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 भगवान की मुस्कान कहाँ पे है? अधरों पे है। तो वो भगवान की मुस्कान की तुलना की जा रही है स्मित किरण, स्मित रूपी किरण से। तो किरण जो है वो कैसी है? कर्पूर जैसी, कर्पूर में खुशबू होती है। तो कह रहे हैं कि वे उनकी बांसुरी की ध्वनि में प्रवेश कर जाती है। वंशी छिद्र आकाश है जो भगवान का मुस्कान है, और क्या बोलते हैं, तथा सुगंधित प्रकाश की तुलना कपूर से की जाती है जो उनके होठों की मधुरता में प्रविष्ट हो जाता है। अभी प्रकाश कैसे प्रवेश कर रहा है हम तो नहीं समझ रहे इसको, लेकिन इतनी बात समझ में आ रहा है कि जो भगवान के अधरों की मधुरता है वही बांसुरी में प्रवेश कर रही है। ये समझ में आ रहा है कि भगवान होठों से ही तो बांसुरी को बजाते हैं, तो जो बांसुरी की ध्वनि है वह भगवान के अधर के मधुरता को लेकर के चल रही है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। बस यही समझ में आ रहा है, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि प्रभाव क्या होता है वो देखते हैं। से धनी चौदि के धाया अंडभेदी वैकुंठ जाया बोले पैसे जग तेरा काने सब मातो यला करी बलात्कारे आनी धरी विशेषतः युवतीर गणे। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। यद्यपि कृष्ण अपनी बांसुरी इस ब्रह्मांड के भीतर बजाते हैं, किंतु इसकी ध्वनि ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर वैकुंठ लोक तो जाती है। इस तरह यह ध्वनि सारे निवासियों के कानों में प्रवेश करती है। यह विशेष रूप से गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करती है और व्रज भूमि की युवतियों के मन को आकृष्ट करके उन्हें बलपूर्वक वहां ले जाती है जहां कृष्ण उपस्थित होते हैं। लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि कृष्ण यहाँ हैं और बांसुरी की आवाज गोलोक में जा रही है, तो गोलोक बांसुरी नहीं बजा रहे हैं, तो हमें कोई समझ में नहीं आ रहा। वहां से गोपियां उठ करके यहाँ आ रही हैं, क्या ये अर्थ है क्या? तो इसको हम पढ़ करके आगे बढ़ जा रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या कहना चाहते हैं।
ध्वनि बड़ा उद्धत पति वृतार भांगे व्रत पति कोला हैते टानी आनी वैकुंठेर लक्ष्मी गणे जई करे आकर्षण तार आगे के बा गोपी गणे।
देखिए एक बात आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि हम सब पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए कृष्ण की सुंदर का वर्णन, की मधुरता का वर्णन करना ये बहुत जरूरी है ताकि जीव के हृदय में लालसा हो उस माधुर्य का आस्वादन करने की। उसका रिलेशनशिप है अगले अध्याय से, जहां पे वो अभिधेय बताया जाएगा कैसे हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब हमें कुछ पता ही नहीं कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितने आकर्षक हैं, तो उनके चरणों की प्राप्ति करने के लिए हम प्रयास क्यों करेंगे बताइए? इसलिए ये सब सुन रहे हैं, भले ही आपको लग रहा हो थोड़ा हाई टॉपिक है, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि बड़ी उद्धत है। उद्धत का मतलब क्या होता है? बलशाली है, बलशाली है, और यह समस्त प्रतिवर्ताओं के व्रतों को भंग करती है। इसकी ध्वनि उन्हें बलात् उनके पतियों की गोदों से निकाल लेती है। उनकी बांसुरी की ध्वनि वैकुंठ लोकों की लक्ष्मियों तक को आकृष्ट करती है, तो भला वृंदावन की असहाय युवतियों के विषय में क्या कहा जाए? अगला श्लोक देखते हैं।
कानेर भीतर वासा करे आपाने तहां सदा स्फूरे।
मुझे पता है
कानेर भीतर वासा करे आपाने तहां सदा स्फूरे अन्य शब्द ना दे प्रवेशिते।
बहुत अच्छा श्लोक है, हमारे लिए बहुत रिलेवेंट है।
आन कथा ना सुने काना आना बलिते बोलाए आना ए कृष्णेर वंशीर चरिते।
कानेर भीतर वासा करे, ये कृष्ण की माधुरी वंशी की ध्वनि कान के भीतर रह जाती है। अपने आपने तहां सदा स्फुरे, और वही स्फुरित होती रहती है, वही सुनाई पड़ती रहती है। अन्य शब्द ना दे पर प्रवेशिते, और वह अन्य शब्दों को प्रवेश नहीं करने देती है। आपको याद आ रहा है कि भीष्म पितामह भी इसी प्रकार से कह रहे हैं कि मेरे सामने कृष्ण हैं, लेकिन जो चतुर्भुज रूप कृष्ण हैं वह उनका स्थान मेरे हृदय में नहीं है, अपितु किसका स्थान है? पारसखा स्वरूप का। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण की ध्वनि ही उनके कान में गूंजती रहती है। क्या आपको ऐसा कभी अनुभव हुआ कि किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया है शब्द जो आपके हृदय को बहुत ठेस पहुंचा दिया है, तो वो शब्द ही सुनता रहता है, बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं वो नहीं सुनाई पड़ता, ये तो नेगेटिव में हम ऐसा बोलते नहीं, इस प्रकार का उनको मधुरता सुनाई पड़ रही है, कृष्ण के मधुरता का अनुभव हुआ कि बांसुरी की ध्वनि सुनकर के उनको और कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। अरे मन तुम्हारा यहाँ है, समथिंग लाइक दैट, समझ रहे। आन कथा ना सुने कान, कान अब और कोई कथा नहीं सुन रहा है। आन बोलिते बोले आन, ये क्या अर्थ हुआ उसका? आन, अरे बंगला होने का क्या फायदा? हाँ, आन बोलिते बोले आन, बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ नहीं होती। ए कृष्णेर वंशीर चरित, ये कृष्ण की वंशी का चरित्र है। एक बार इसे याद आ रहा है, नित्यानंद प्रभु एक बार बिना वस्त्र के महाप्रभु के घर में पहुंच जाते हैं और उन विष्णु प्रिया भी वहां पे। तो उनसे पूछते हैं महाप्रभु, अरे आपने वस्त्र क्यों नहीं पहने? बोलते मैंने खाना खा लिया है। कुछ का कुछ उनको पता ही नहीं कि क्या है, भाई स्थिति है नित्यानंद। और पगड़ी बांधे हुए नित्यानंद प्रभु प्रेम में अद्भुत, एकदम अद्भुत। तो ये स्थिति है चैतन्य, ऐसे मन करता है कि चैतन्य भागवत भी पढ़ानी चाहिए, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग, जिस तरह से उन्हें पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, होश में तो हो ऐसा बोलते हैं ना, तो होश ही खोई बैठे। उनकी बांसुरी की ध्वनि उस पक्षी के समान है जो गोपियों के कानों के भीतर अपना घोंसला बनाता है। कितना सुंदर प्रपद अनुवाद दिखे, और वहीं पर सदा बना रहता है। वह उनके कानों में किसी अन्य ध्वनि को प्रविष्ट नहीं होने देती, बांसुरी की ध्वनि और कुछ और सुन ही नहीं पाती। निसंदेह गोपियां ना तो और कुछ सुन पाती हैं और ना ही किसी और बात पर ध्यान एकाग्र कर पाती हैं और ना ही वे समुचित उत्तर दे पाती हैं। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि के प्रभाव ऐसे ऐसे हैं। अब तात्पर्य प्रभुपाद जी का हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, मैं पहले भी जब आप में बोल चुका हूं, इन बहुत अच्छा है तात्पर्य। गोपियों के कानों में कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सदैव प्रधान बनी रहती है, इसलिए वे अन्य कुछ नहीं सुन पाती। कृष्ण की बांसुरी की पवित्र ध्वनि की सतत स्मृति उन्हें प्रबुद्ध एवं जीवंत बनाए रखती है। अमेजिंग, प्रबुद्ध, एनलाइवेंस और वे अपने कानों में किसी अन्य ध्वनि को प्रवेश करने नहीं देती, उनको अच्छा ही नहीं लगता। चूंकि उनका ध्यान कृष्ण की बांसुरी पर स्थिर रहता है, इसलिए वे अपने मनों को अन्य किसी विषय की ओर मोड़ नहीं पाते। आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रयास कर रही हैं, उनका मन अब केवल बांसुरी की ध्वनि पे जा रहा है, लाइक प्रैक्टिकल समाधि, चलते फिरते काम करते कुछ भी कर रहे हैं तो उधर ही चल रहा है। अब आपको अभी भी कोई अनुभव नहीं तो कभी कभी हमारा कान खराब हो जाता है तो टू टू की आवाज आती है। एक भक्त बता रहे थे, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है, मेरे प्रभु जी मैं जब कर रही थी, माता जी लोग भावुक तो होते ही हैं, तो जब कर रही थी मुझे कुछ शब्द सुनाई पड़ा। उन्होंने कहा आपका कान खराब हो गया है, इतनी जल्दी शब्द नहीं सुनता है, कृष्ण की बांसुरी इतनी जल्दी नहीं सुनाई पड़ती है कि बस आप दो महीना चार महीना जब किए और कृष्ण की बांसुरी सुनना चालू कर दिए। ऐसे गौरांग प्रभु में जी उनसे पूछा गया, आपको कभी कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ी? उत्तर बड़ा अच्छा गौरांग प्रभु दे के है, बेटा पहले जो सुबह अलार्म बजता है मंगल आरती का, वो अच्छा लगने लग जाना चाहिए। अभी तो अलार्म ही खराब लग रहा लगता है, किस मूर्ख ने अलार्म लगा दिया? वो मूर्ख हम ही होते हैं, स्वयं ही अलार्म लगाते हैं 3 बजे के, 3:30 बजे के, वो अलार्म ही अच्छा नहीं लग रहा, कृष्ण की बांसुरी की सुनने की बात करते हो, इतना चीप भी नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे, देखिए। कृष्ण की बांसुरी की यह ध्वनि हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा प्रस्तुत की जाती है। देख रहे हैं कितना बड़ा भाग्य है, जैसे जो गायत्री भी हमको प्राप्त है वह भी कृष्ण की बांसुरी से ही उत्पन्न है, और वह सबसे पहले ब्रह्मा जी के कानों में प्रवेश करती है, उनको दीक्षित बनाती है और फिर वो आगे अन्य अपने शिष्यों को या पुत्रों को वह गायत्री मंत्र देते हैं। अद्भुत है, हम लोग पहले सुन चुके हैं ना, काम गायत्री कृष्ण का ही स्वरूप है। भगवान का एक निष्ठावान भक्त जो इस दिव्य ध्वनि का उच्चारण करता है और इसे सुनता है, वह इसका इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसका ध्यान किसी अन्य ऐसे विषय की ओर नहीं जाता जो कृष्ण के आनंदमय गुणों तथा साज सामग्री से जुड़ा नहीं होता। तो जो भी भक्त वीडियो ऑन किए हैं, आप लोगों का क्या ऐसा अनुभव है कि भगवान का नाम उच्चारण करने से, बारंबार उच्चारण करने से अब दुनियादारी की बातें अच्छी नहीं लगती जो हमारे सामने वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं, हमारे सामने मतलब जो बैठे हैं, आप लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं अभी तो अमृत लग रहा है प्रभु जी, अखबार और न्यूज। तो एक भक्त सोच रहे थे कि कैसे प्रगति हो, हम कैसे जाने, तो प्रजल कैसा लग रहा है देख लीजिए, दुनियादारी की बातें सुनना करना अच्छा लग रहा है, तो अभी प्रगति की अपेक्षा है, प्रगति करनी होगी। और अगर अभी एकदम खराब लग रहा है, रादर गुरु महाराज शब्द हैं, पेनफुली बोरिंग, व्हेन प्रजल्पा इज नॉट ओनली बोरिंग बट पेनफुली बोरिंग, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर बीइंग एडवांसमेंट। और देखिए प्रजल्प केवल वाणी से किया जा रहा तो मतलब नहीं है, मान लो हम कुछ आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं जगत में जिसका भक्ति संबंध नहीं है, तो अभी कचरा है हृदय में तभी तो पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो क्या प्रयोजन है बताइए। तो ये काफी अच्छा है, और इसका प्रभाव देने की अगर हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अच्छे से जप कर रहे हैं, तो ये प्रभाव होना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र जप करना या भगवान के बारे में सुनना ही अच्छा लगे और लगना चाहिए। ये प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बात सुनने को मिल रही ना।
पुना कहे बाह्य ज्ञाने आन कहिते कहिलु आने, कृष्ण कृपा तुमार ऊपरे, मोरा चेत भ्रम करी निजैश्वर्य माधुरी, मोर मुखे सुनाए तुमारे।
पुना कहे बाह्य ज्ञाने, जब महाप्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ फिर से, तो कहते हैं आन कहिते कहिलु आने, अरे मैं कुछ और बोलना चाहता था मैं कुछ और ही बोल गया, कृष्ण कृपा तुम्हारे ऊपर है, हे सनातन तुम पर तुम्हारे ऊपर कृष्ण की कृपा है। क्यों भाई? मोरे चित्त भ्रम करी, मेरे चित्त को भ्रमित करके निजैश्वर्य माधुरी, अपने ऐश्वर्य और माधुरी को मोर मुखे सुनाए तुम्हारे, कृष्ण ने मेरे मुख से तुमको सुना दिया। ये श्लोक कौन बोल रहा है? सनातन गोस्वामी जी को चेतन महाप्रभु बोल रहा है। पुनः अपनी बाह्य चेतना में आकर श्री चेतन महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, मैं जो चाहता था वह नहीं कह पाया, भगवान कृष्ण तुम पर अत्यंत कृपालु हैं, क्योंकि मेरे मन को भ्रमित करके उन्होंने अपना निजी ऐश्वर्य तथा माधुरी प्रकट की है, उन्होंने ये सारी बातें तुम्हारी जानकारी के लिए मुझसे सुनवा दी हैं। तो हमारे भी कृपा, हम पर भी कृपा है कि हमको सुनने को मिल रहा है। तात्पर्य, श्री चेतन महाप्रभु ने स्वीकार किया कि वे उन्मत्त व्यक्ति की तरह बोल रहे थे और ऊपरी स्तर पर अवस्थित लोगों की समझ के लिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। थैंक यू प्रभु जी, समापन के समय तो आ ही गया, समापन समारोह हो रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, प्राइम मिनिस्टर आए बाहर, प्रसाद लेट मिला आपको, कोई विशेष लेट मिला? चले छोड़िए, क्या करेंगे सब, चेतन चेतामृत की मधुरता में कहाँ ही नमकीन चीज डालते हैं, छोड़िए। तो क्या आपने नोटिस किया था कि महाप्रभु भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे थे, और ऐश्वर्य करते 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 एकदम से कृष्ण का माधुर्य उनके हृदय में स्फुरित होने लगा और वह बोलने लगे? जो लोग सुने हैं पूरे अध्याय को सब इस बात को जानते हैं। तो कह रहे हैं कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं, कृष्ण ही मुझसे बोला। वैसे वो कृष्ण है कौन? वो स्वयं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं। संसारी व्यक्ति को कृष्ण के शरीर, उनके गुणों तथा उनकी बांसुरी के विषय में तरह तरह के कथन किसी उन्मत्त होना चाहिए, उन्मत्त पुरुष की कथन जैसे लगे, कथन जैसे लगेंगे। अर्थात ये क्या पागलपने की बात कर रहे हो? ये हकीकत है, हकीकत वास्तविकता है कि कृष्ण सनातन गोस्वामी के समक्ष अपनी विशेष कृपा के कारण प्रकट होना चाहते थे। कृष्ण कहाँ हो रहे हैं? तो कृष्ण कथा प्रकट हो रही है, कृष्ण कहाँ प्रकट हो रहे हैं? कृष्ण कथा कृष्ण से अभिन्न है, उन्हीं की तरह सर्वाकर्षक है। कहता सत्संगात मुक्त दुःसंगो ना हातुम उत्सहित विरहेन कथम, ऐसे कुछ है ना, कि जो व्यक्ति भक्तों के संग में आकर के दुसंग से मुक्त हो गया है वह भगवान की कथा को भी नहीं त्याग सकता है। तो भगवान की कथा भगवान से भिन्न है, आकर्षक है उनकी तरह। अतः कृष्ण ने किसी न किसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु जो पागल जैसे प्रतीत होते थे उनके मुख से सनातन गोस्वामी को अपने तथा अपनी बांसुरी के विषय में बतला दिया। श्री चेतन महाप्रभु ने स्वीकार किया कि वे सनातन गोस्वामी से और कुछ कहना चाहते थे, किंतु भावावेश के कारण वे भिन्न विषय के बारे में बोल गए।
आमी तो बाउल आना कहिते आना कही, कृष्ण रे माधुर्या मृत श्रोते जाय ही वही।
आमी तो बाउल, मैं तो पागल हूं, आना कहिते आना कही, कहना कुछ चाहता हूं और कुछ बोल दे रहा हूं।
कृष्ण रे माधुर्य अमृत स्रोते जाहि वही, कृष्ण का माधुर्य अमृत इस स्रोत के द्वारा बह रहा है।
चूंकि मैं उन्मत्त हो चुका हूं इसलिए मैं कुछ का कुछ कह रहा हूं। इसका कारण यह है कि मैं भगवान कृष्ण की दिव्य माधुरी के अमृत सागर की तरंगों द्वारा बहाए लिया जा रहा हूं। समझ रहे ना, जो अमृत स्फुरित हो रहा है बस वही मुख से बाहर निकल रहा है, ये कहने का आशय तमाम प्रभु। तब तब महाप्रभु क्षण एक मौन करी रहे, मन एक करी पुनः सनातन कहे। तब महाप्रभु कुछ क्षण के लिए मौन रहे, फिर कृष्ण के कुछ गुणों का स्मरण कर रहे हो या अपने को कुछ बाह्य चेतना में ला रहे हैं, जो कुछ कुछ सोच रहे हैं कि मुझे को सनातन गोस्वामी कहना है। मन एक करी, मन को संग्रहित करके पुनः सनातन गोस्वामी को कहा। इसके बाद श्री चेतन महाप्रभु एक क्षण तक मौन रहे, अंत में अपने मन को संतुलित करते हुए पुनः सनातन गोस्वामी से कहे, कृष्ण रे माधुरी और महाप्रभुर मुखे इहा जे सुने से भासे प्रेम सुखे। कृष्ण की माधुरी और वह भी महाप्रभु के मुख से, यहाँ जय सुने जो सुनता है से ही भासे प्रेम सुख है, वह प्रेम सुख में तैरता है। फिर कहेंगे नहीं प्रभु जी, हम तो प्रेम सुख में नहीं तैर रहे। देखिए ये प्रेम का सागर धीरे 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 जितनी बार सुनेंगे उतनी बार यह प्रेम बढ़ता है। ये आप जानते क्रमे क्रमे से ही भक्त है ही उत्तम। अब इसमें ये तो नहीं लिख रहा कौन सुने, लिखा है जय ही सुने, माता जी प्रभु जी बेटा जी भाई जी कोई सुनता है तो वह कृष्ण प्रेम के सुख में बढ़ता है। आगे इस पे भक्ति देवामृत महाराज बोल रहे थे प्रवचन में, कह रहे थे कि भाई नाम में तो अपराध का विचार है, दूसरे प्रेम थोड़ा मिलने में कठिनाई है, लेकिन श्रवण में तो अपराध का विचार है नहीं। तो सुने हैं श्रवण के 10 अपराध, हम तो वैसे सुने नहीं है, सुने आप क्या? काफी इंटरेस्टिंग है, नहीं सोचा आपने कभी? श्रवण के 10 अपराध बताइए। एकाध तो है सो जाना तो ठीक है, तो बस बड़ी बात नहीं। तो हम तो सुन चुके हैं ना, कोमा वाला व्यक्ति वो भी सुन लेता है तो कोमा में तो कह रहे तो और तो मैं सोचने लगा, मतलब देवामृत महाराज बोल रहे थे कि मैं सोचने लगा कि चैतन्य चरितामृत के अध्याय को पढ़ूंगा तो कृष्ण प्रेम अपने आप विकसित होता चला जाएगा, उसमें कोई अपराध का डर तो है नहीं। तो इसलिए मैंने सुना 108 बार महाराज उस समय, मैं समझता हूँ 5-6 साल या 10 साल कितनी पुरानी बात याद नहीं रहती मेरे को, घटना याद रहती। उस टाइम पे मैंने सुना था महाराज जी 108 बार चैतन्य चरितामृत पढ़ चुके थे। परम पूज्य देवामृत महाराज ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ये भी रुचिकर बात है, महाराज इस चैतन्य चरितामृत के प्रकाशन में सहयोगी भी थे। वो ये चैतन्य चरितामृत के 17 वॉल्यूम 2 महीने में छाप दिए गए थे, पता है आपको? और प्रभुपाद ने कहा कि जो भी इसको छापने में सहयोग किया है वो भगवत धाम जरूर जाएगा। तो महाराज बोल रहे थे मैं इतना तो निश्चिंत हूँ कि जीवन में चाहे कुछ भी करूँ मैं भगवत धाम जरूर जाऊंगा, जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने कह दिया है। 2 महीने में तो शायद हम पढ़ भी ना पाए इसको पूरा, 2 महीने में भक्तों ने छाप दिया पूरा रात दिन करके। आप लोग लीलामृत में पढ़े होंगे इस बात, तो ये सब है, लेकिन बहुत गोई है बात है, बहुत गोई है और ये है ही गोह्य। इस तरह का वर्णन आपको सामान्य शास्त्रों में नहीं प्राप्त होगा। यह है यदि किसी को श्री चेतन चरितामृत के इस अध्याय में कृष्ण की माधुरी के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता है तो वह क्या लिखा है, निश्चित रूप से भगवत प्रेम के दिव्य आनंद सागर में तैरने का पात्र होगा। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं ये सोच रहा था उस पर परम पूज्य जय पताका महाराज की बात की, वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स एंड इन दैट प्रोसेस हाउ मच मर्सी विल कम अपॉन अस। मैं इसीलिए ये कुछ प्रयास कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत बार भक्तों को डरा दिया जाता है चैतन्य चरितामृत से। हम मान रहे हैं कि कुछ श्लोक या कुछ एक आध चैप्टर ऐसे हैं जो हम बहुत ही हाई है, उसको हम लोग पहले ही डिक्लेयर करते हैं उसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पब्लिक में हम नहीं पढ़ सकते उसको, वो बहुत ही उच्च बातें हैं गोपियों के संबंध में। लेकिन बहुत सारी बातें जो हम पढ़ सकते हैं, अभी आप अगले अध्याय में देखना कैसे एकदम आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि हम भक्ति कैसे करें, एकदम नया व्यक्ति भी समझ सकता है उसको, एकदम नया व्यक्ति समझ पाएगा। और भक्तों से रिक्वेस्ट है कि अब उसको स्वयं से पढ़ना शुरू कर दे, वहां पे हम लोग पहले इसको पहले पूरा करता हूं उसके बाद बातें करूंगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आशा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप रघुनाथ, रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों की आशा करते हुए चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। इस तरह श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 21वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्यपूर्ण हुआ, जिसमें कृष्ण के आनंदमय गुणों का वर्णन हुआ। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री प्रभुपाद की जय।